زمانوں کی امنگ، باب نمبر 12، آزمائش۔ اور یسوع روح القدس سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا، اور 40 دن تک روح کی ہدایت سے بیابان میں پھرتا رہا۔ لوکا 1:4۔ اور فلفور روح نے اسے بیابان میں بھیج دیا، اور وہ بیابان میں 40 دن تک شیطان سے آزمایا گیا اور جنگلی جانوروں کے ساتھ رہا کیا، اور فرشتے اس کی خدمت کرتے رہے۔ مرقس 12:1-13۔ ان دنوں میں اس نے کچھ نہ کھایا۔ لوکا 2:1۔ جب یسوع بیابان میں آزمائے جانے کو بھیج دیا گیا تو وہ خدا کی روح میں گیا۔ اس نے آزمائشوں کو مدعو نہ کیا۔ وہ بیابان میں تنہا رہنے کے لیے گیا تھا تاکہ اپنے کام اور اس کی غرض و غایت پر غور و خوض کر سکے۔ دعا اور روزے کے ذریعے اس نے خود کو آراستہ کیا تاکہ جس خوفی راستہ پر اسے چلنا تھا اس کے لیے تیار ہو سکے۔ ابلیس بھی جانتا تھا کہ نجات دہندہ بیابان میں گیا ہے، اور اسے آزمانے کا اس سے اور کوئی بہتر وقت نہیں۔ نور کے شہزادے اور تاریکی کے حاکم کے درمیان کشمکش زندگی اور موت کا سوال تھا، کیونکہ انسان کو گناہ میں دھکیلنے کے بعد ابلیس کا دعوی تھا کہ یہ دھرتی اب میری ہے اور میں اس کا فرما روا ہوں۔ ہمارے پہلے والدین آدم اور حوا کی فطرت کو اپنی فطرت پر تبدیل کر کے اس نے سوچا، یہاں میں اپنی حکومت قائم کروں گا۔ بلکہ اس نے اعلانیہ کہا کہ انسان نے مجھے اپنا حاکم چن لیا ہے۔ اور یہ سچ تھا کہ آدم کے ذریعے اس کی حکومت اس دنیا پر ہو گئی۔ ابن آدم ہوتے ہوئے بھی مسیح یسوع کو صرف خداوند خدا کے تابع رہنا تھا۔ اس طرح اس نے ثابت کرنا تھا کہ انسان پوری طرح ابلیس کے قبضہ میں نہیں ہے، اور یہ صرف ابلیس کا جھوٹا دعویٰ ہے۔ وہ تمام لوگ جو اس کے چنگل سے آزاد ہونا چاہتے ہیں انہیں آزاد کرایا جائے گا، اور گناہ کے سبب وہ حکومت جو بزرگ آدم کھو چکا تھا اسے بحال کیا جائے گا۔ باغ عدن میں اس اعلان کے بعد کہ میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، پیدائش 15:3۔ ابلیس جانتا تھا کہ اس دنیا پر اس کا مکمل قبضہ نہیں۔ انسان کے اندر ایسی قوتیں کام کرتی ہوئی دیکھی گئیں جو ابلیس کی حکمرانی کے خلاف جنگ آزما تھیں۔ بزرگ آدم اور اس کے بچوں نے جو قربانیاں گزرانی وہ اس نے بڑی دلچسپی اور انہماک کے ساتھ دیکھیں۔ ان مذہبی رسوم میں اس نے زمین اور آسمان کے ملاپ کو دیکھا، لہذا اس نے ان میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ اس نے خدا کے بارے غلط تفسیر کی، اور اسی طرح مذہبی رسوم کو بھی جو نجات دہندہ کی علامت تھیں غلط رنگ دیا۔ ابلیس انسانوں کی بربادی میں خوش تھا، اسی لیے اس نے خدا کو اس طرح پیش کیا کہ انسان اس سے لرزاں اور ترسا رہیں۔ ابلیس نے انسانوں کے بد جذبات کو ترغیب دی تاکہ ان پر اپنی حکومت قائم رکھ سکے۔ جب خدا کا تحریر شدہ کلام دیا گیا تو ابلیس نے نجات دہندہ کے آنے کی پیشن گوئی کا بغور مطالعہ کیا۔ نسل در نسل ان پیشن گوئیوں کے بارے ابلیس لوگوں کو بے خبر رکھنے کے لیے کام کرتا رہا، تاکہ جب وہ آئے تو یہ اسے رد کر دیں۔ مسیح یسوع کے جنم کے بارے ابلیس کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ آ چکا ہے، یعنی جس کا وعدہ کیا گیا تھا، اور اب وہ میری حکومت میں تنازعہ ڈالے گا۔ اور جب فرشتے نے نئے بادشاہ کے آنے کی تصدیق کر دی تو ابلیس اس کے اعلان پر ڈر کے مارے تھر تھرانے لگا، کیونکہ ابلیس مسیح یسوع کے اس رتبے کو بخوبی جانتا تھا جو وہ آسمان میں رکھتا ہے۔ وہ اس بات پر انگشت بدنداند رہ گیا کہ خدا کا بیٹا مجسم ہو کر اس دنیا میں آ گیا ہے۔ یہ سب کچھ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ ابلیس کے لیے ابن آدم کی یہ بڑی قربانی سربستہ راز تھا۔ جس نے نسل انسانی کو دھوکہ دے رکھا تھا اس کی خود غرضانہ نیت ابن آدم کی بے لوث محبت کو کیوں کر سمجھ سکتی تھی؟ آسمان کا جلال اور صلح اور خدا کے ساتھ رفاقت انسان بہت کم سمجھے۔ تاہم لو سفیرہ سے خوب سمجھتا تھا جو پہلے سایہ افغان فرشتہ تھا۔ چونکہ اسے آسمان سے گرا دیا گیا تھا اس لیے وہ چاہتا تھا کہ خدا کے بندوں کو خدا کے دور کر کے خدا سے بدلہ لے، اور وہ آسمانی باتوں اور چیزوں کی تحقیر کر کے ہی ایسا کر سکتا تھا۔ اس لیے اس نے ہر حربہ استعمال کیا تاکہ انسانوں کے دل جسمانی چیزوں میں دلچسپی رکھیں۔ رکاوٹ اور مخالفت کا سامنا کیے بغیر मसीह खुदावंद इंसानों को अपनी हुकूमत के लिए जीत न सकता था। जब से वो बैतुलहाम में बच्चा बनकर आया, उसी वक्त से उसे मुसलसल इबलीस की मुखालिफत का सामना था। खुदा की शबी मसीह में पाई जाती थी, जिसे इबलीस तबाह करने का तहिया कर बैठा था। जो भी उस दुनिया में आया है, धोखेबाज इबलीस के हाथों बच नहीं सका। तमाम इबलीसी कुव्वतें मसीह के खिलाफ काम पर मामूर कर दी गईं और उन्हें हुक्म दिया गया कि अगर मुमकिन हो तो उस पर गालिब आएं। नजात दहिंदा के बपतिस्मा के वक्त इबलीस भी गवाहों में शामिल था। उसने देखा कि बाप के जलाल ने बेटे को मुलब्बिस कर रखा है। उसने यहवा की आवाज सुनी, जिसने यस्सू की उलूहियत की तस्दीक की। बुजुर्ग आदम के गुनाह के बाद नस्ले इंसानी का राब्ता खुदावंद से कट चुका था। आसमान और जमीन की अगर मुलाकात होनी थी तो वो सिर्फ अल मसीह के जरिया। अब तो अल मसीह नफ़से नफीस आ चुका था, गुनाह आलूद जिस्म की सूरत में। रोमियो 3:8। खुदा ने खुद फरमाया कि वो नस्ले इंसानी से अल मसीह की वसातत से रफाकत रखता रहा है, और अब वो नस्ले इंसान की रफाकत और शराकत मसीह में करता है। इबलीस का गुमान था कि आदम के गुनाह के बाद खुदा और नस्ले इंसानी के दरमियान मुकम्मल जुदाई पैदा हो जाएगी, लेकिन अब इबलीस पर वाज़े हो गया कि खुदा और इंसान के दरमियान सुलह है और टूटा हुआ रिश्ता बहाल हो गया है। इबलीस ने जान लिया कि अब उसे गालिब आता है या मगलूब होना है। नीज़ उसे अब अपने फरिश्तों पर ज्यादा इन्हिसार नहीं करना, बल्कि उसे ये जंग बजाते खुद लड़ना होगी। लिहाजा बदी की तमाम कुव्वतें खुदा के बेटे के खिलाफ जमा हो गईं। जहन्नम के तमाम तीरों का हद्फ सिर्फ और सिर्फ यस्सू मसीह था। जो कश्मकश मसीह यस्सू और इबलीस के दरमियान जारी थी, उसके बारे बहुतेरे सोचते थे कि उसका जिंदगियों पर कोई असर न पड़ेगा,
इसलिए उन्हें इससे कोई खास दिलचस्पी न थी। ताहम इस जंग का इरादा हर इंसान के दिल की बादशाही में जारी रहता है। कोई शख्स भी इबलीस से नबर्द आजमा हुए बगैर खुदा की खिदमत नहीं कर सकता। जिन आजमाइशों का मुकाबला मसीह येसु को करना पड़ा, हमें उनका सामना करना बहुत ही मुश्किल दिखाई देता है, मगर याद रहे, उसकी सीरत हमसे बरतर है। उसकी आजमाइशें भी उसी कदर ज्यादा और सख्त थीं। तमाम दुनिया के हौलनाक गुनाहों का बोझ रखते हुए मसीह खुदावंद इश्तहा, दुनिया की मोहब्बत जैसी आजमाइशों पर गालिब आया। यही आजमाइशें थीं जिन्होंने आसानी से हमारे पहले वालदैन को उलझा लिया था, और यही आजमाइशें आज हमें उलझा रही हैं। बुजुर्ग आदम के गुनाह की तरफ इशारा करते हुए इबलीस ने कहा था कि खुदावंद की शरीयत बेइंसाफी पर मबनी है, इस पर कोई अमल नहीं कर सकता। बशरियत में होकर मसीह खुदावंद बुजुर्ग आदम की नाकामियों का इजाला करने आया था। मगर एक बात याद रहे कि जब इबलीस ने बुजुर्ग आदम और हव्वा को आजमाया, उस वक्त उन पर गुनाह का कोई बोझ ना था। वो दोनों जिस्मानी लिहाज से भी तंदुरुस्त और तवाना थे। उनकी जहनी और जिस्मानी तमाम कवा बरकरार थीं। अदन का जलाल उन्हें चारों तरफ से घेरे हुए था। रोजाना आसमानी मखलूक उनके पास आया जाया करती थीं। लेकिन जब खुदावन मसीह बयाबान में इबलीस से आजमाए जाने के लिए दाखिल हुआ, उसे ये तमाम सहूलतें मयसर ना थीं। 4000 साल तक इंसानियत कमजोर से कमजोर तर होती चली गई थी। मसीह येसु ने वही बशरियत अपने ऊपर ली, ताकि इंसान को उसकी पस्त हाली से उठाकर बुलंदियों तक पहुंचाए। पहले मुकद्दस जोड़े के सामने बागे अदन में और येसु मसीह के सामने बयाबान में सबसे पहले खाने पीने की आजमाइश रखी गई, क्योंकि ये लाजिम था कि जहां से नस्ल इंसानी की बर्बादी शुरू हुई थी, वहां से ही उसकी निजात का काम शुरू किया जाता। जैसे बुजुर्ग आदम खाने की आजमाइश में गिरा, लाजिम था कि इश्तहा से मुंह मोड़कर इब्ने आदम इस आजमाइश पर गालिब आता। और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी, और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। मत्ती 2:4-5। बुजुर्ग आदम के वक्त से लेकर इश्तहा की रगबत यहां तक बढ़ गई थी कि उस पर कोई कंट्रोल बाकी ना रहा। यूं लोगों में हर तरह की बीमारी आ गई।
वो अखलाकी तौर पर भी बहुत गिर गए। अब उनके लिए मुश्किल हो गया कि बद परहेजी और इश्तहा पर बजाते खुद काबू पा सकें। इंसान की खातिर मसीह ने सख्त तरीन आजमाइशों का मुकाबला किया। जब खुदावंद येसु मसीह बयाबान में दाखिल हुआ, खुदा के जलाल ने उसे घेर लिया और वो खुदा की सोहबत में आ गया। यूं वो इंसानी कमजोरियों से बुलंदोबाला हो गया। इसके बाद खुदावंद का जलाल इससे अलहदा हो गया ताकि वो तन्हा आजमाइश का मुकाबला करे। हर लम्हा उस पर भारी था क्योंकि इंसानी फितरत कश्मकश का मुकाबला करने से जी चराती थी जो उसका इंतजार कर रही थी। 40 दिन उसने फाका और दुआ में बसर किए। अब वो भूख से निढाल होकर जहनी अजियत में मुब्तला हो गया। उसका चेहरा हर एक बशर से जायद और उसका जिस्म बनी आदम से ज्यादा बिगड़ गया था। यसैया 14:52। अब मौका से फायदा उठाते हुए इबलीस ने सोचा कि वो मसीह येसु पर गालिब आ सकता है। उस वक्त मसीह की दुआ के जवाब में आसमान से फरिश्ता आ गया और उसने बताया कि मसीह का रोजा खत्म हो गया है। जैसे खुदावंद ताला ने फरिश्ता के जरिए बुजुर्ग इब्राहिम को अपना पैगाम भेजा कि लड़के को जिबा ना करे, इसी तरह जब मसीह खुदावंद भूख से जाबहक होने को था, उसने अपना फरिश्ता भेजकर रिहाई दी। वरना मसीह खुदावंद रजाकाराना तौर पर मौत की खून आलूदा राह पर मुसलसल गामजन था। नजात दहिंदा भूख से बेहोश हो चुका था और जब उसे खाने की तलब बेहद तंग कर रही थी, उसी वक्त इबलीस वारिद हो गया और पत्थरों की तरफ इशारा करके कहने लगा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों को कह के रोटी बन जाए। इबलीस यहां जलाली फरिश्ते की सूरत में वारिद हुआ, मगर उसके बात करने के अंदाज से ही पतिया चल गया कि यह धोखेबाज है, क्योंकि उसने ये ना कहा कि तू खुदा का बेटा है, बल्कि अगर तू खुदा का बेटा है। इन अल्फाज में से शक की बू आती है। इन अल्फाज में खुशामद और दर पर्दा इल्जाम का इशारा मिलता है। इबलीस चाहता था कि जो हरबा उसने इब्तदा में बुजुर्ग आदम और हव्वा को गिराने के लिए इस्तेमाल किया था, वही हरबा मसीह को गिराने के लिए इस्तेमाल करे। क्या वाकया खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? पैदाइश 1:3। इस तरह उसके कलाम में सच्चाई तो थी, मगर उसके कहने के अंदाज में खुदा के कलाम पर शक का गुमान होता है। वो अपने मुद्दा में कामयाब हो गया जब अपस ने हव्वा को कहा कि असल बात यह है कि खुदा नहीं चाहता कि आप वो फल खाओं। उसमें बड़ी खूबियां हैं, ऐसा ना कि तुम उसकी मानिंद हो जाओ। पस मसीह के पास आकर भी इबलीस ने ऐसे ही जज्बात का इजहार किया कि अगर तू खुदा का बेटा है। इन अल्फाज से खुद इबलीस गैज़ो गज़ब भर गया। उसके बोलने के अंदाज में गहरा शक पाया जाता था। असल में इबलीस ये कह रहा था कि अगर तू खुदा का बेटा होता तो क्या वो अपने बेटे के साथ इस तरह का सलूक रवा रखता? क्या वो उसे बयाबान में दरिंदों के साथ तन्हा छोड़ता? क्या वो उसे बगैर खुराक, बगैर अपनी सोहबत और आराम के यूं ही छोड़ देता? इसका इशारा इस तरफ था कि तू खुदा का बेटा नहीं, वरना वो तुझे इस हालत में ना छोड़ता। इसलिए अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों को कह रोटी बन जाए, ताकि तू खाकर तमाम मुसीबत और भूख के अजाब से रिहाई पाए। आसमान से जो आवाज आई थी कि ये मेरा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, मत्ती 17:3, अभी तक इबलीस के कानों में गूंज रही थी, मगर वो मुसम्मम इरादा किए हुए था कि जो उस सुना था उसकी गवाही ना दे। जो कलाम खुदा ने किया था वो मसीह यसू का इलाही मिशन था। वो आया ताकि हम इंसानों में इंसान की सूरत में रहे, मगर इबलीस चाहता था कि वो खुदा के कलाम पर शक करे। अगर इबलीस नजात दहिंदा के ईमान को मुतजलजल करने में कामयाब हो जाता तो उसकी फतह यकीनी थी। उसका ख्याल था कि भूख और उस जिस्मानी बदहाली के दौरान वो मसीह के ईमान को लरजाने में कामयाब हो जाएगा और फिर अपने आप को बचाने के लिए जरूर मोजजा करेगा। अगर वो ऐसा करता तो नजात की तजवीज टूट जाती। जब सबसे पहले इबलीस और इब्नुल्लाह के दरमियान कश्मकश शुरू हुई थी, उस वक्त आसमानी फौजों का कमांडर मसीह यसु था और बागी फरिश्तों की अफवाज का इबलीस। आखिरकार इबलीस को शिकस्त फाश हुई और उसे उसके हवारियों समेत आसमान से उस धरती पर गिरा दिया गया। मगर अब उन दोनों की कैफियत बरक्स हो गई है और इबलीस उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहता है। इबलीस का कहना है कि फरिश्तों में से कवीतर फरिश्ता यानी मसीह जमीन पर गिरा दिया गया है। नीज मसीह की हालत भी ये तासुर देती है कि खुदा ने और इंसानों ने उसे तर्क कर दिया है, और अगर वो पत्थरों से रोटियां बनाकर मौजजा कर दिखाए तो वो उसे इलाही मान लेगा और इस तरह कश्मकश का खात्मा हो जाएगा। खामोशी से बगैर जद्दोजहद किए यसु मसीह उस धोखेबाज की सुनने को तैयार ना था, और ना ही खुदा का बेटा इबलीस को अपनी उलूहियत का सबूत देने को राजी था, और ना ही वो उसे ये बताना चाहता था कि उसकी मौजूद है हालत की वजह क्या है। इबलीस के हुक्म की तामील से ना तो इंसान को और ना ही खुदा को फायदा पहुंच सकता था। अगर मसीह खुदावन उसके मशवरे को मान भी लेता, फिर भी इबलीस उसे कहता कि मुझे कोई निशान दिखा कि तू खुदा का बेटा है। अगर खुदावंद यसु मसीह उसे कोई सबूत फराहम कर भी देता, फिर भी इबलीस के दिल से बगावत दूर न होती। यसु आया ताकि उसी तरह आजमाया जाए जैसे हमारी आजमाइश होती है, ताकि हमारे लिए ताबेदारी और ईमान का नमूना छोड़े। खुदावन मसीह ने किसी मौके पर भी अपनी जात के लिए मौजजा ना किया। उसके तमाम हैरत अंगेज काम दूसरों के लिए हुआ करते थे। गो मसीह इब्तदा से ही इबलीस को जानता था, फिर भी उसने उस जंग में दाखिल होने के लिए पसोपेश ना की। आसमान से जो आवाज आई थी वो उसकी यादाश्त में महफूज थी, और वो ही उसकी तकवियत का बायस थी। वो अपने बाप की महब में पायम रहा, इसीलिए वो आजमाइश के साथ समझौता नहीं कर सकता था। मसीह यस्सु ने इबलीस का मुकाबला खुदा के कलाम से किया। लिखा है, उसने कहा। खुदा का कलाम ही बड़ा हरबा था जिसे उसने उस जंग में इस्तेमाल किया। इबलीस ने मसीह यस्सु से उसने उस जंग में इस्तेमाल किया। इबलीस ने मसीह यस्सु से उसकी उलूहियत के सबूत में कोई निशान या मौजजा तलब किया, मगर यस्सूर मसीह ने मौजजा से बढ़तर चीज पेश की। खुदावंद यूं फरमाता है, ऐसा निशान था जिस पर तकरार नहीं हो सकती थी, लिहाजा इबलीस अपने नापाक अजायम में कामयाब न हो सका। उस वक्त मसीह यसु नहायत ही कमजोरी महसूस कर रहा था जब उस पर यह सब्र आजमा आजमाइश आई। गुमान गालिब था कि इबलीस को फतह होगी, क्योंकि इबलीस का तरीका वारदात ही है कि जब इंसान कमजोर हो उस वक्त उस पर हमला करके उसे मगलूब कर ले। इंसान की जिस्मानी कमजोरी में उसकी कुव्वत इरादी भी कमजोर पड़ जाती है, नीज खुदा में उसका ईमान कम हो जाता है। यूं वो सब जो काफी अरसा से खुदावन के साथ वफादार रहे हों बासानी मगलूब हो जाते हैं। जनाब मूसा बनी इसराइल की 40 साला मुसाफराना जिंदगी से आजिज आ गया था, उसका ईमान लरस गया और मऊदा मुल्क की सरहदों के पास पहुंचकर दिल बर्दाश्ता हो गया। यही हाल एलिया का हुआ जो अखी बादशाह के सामने बेखौफ व खतर खड़ा रहा, जिसने तमाम बनी इसराइल कौम का सामना किया, जिसने बाल के 450 झूठे नबियों को मौत के घाट उतारा, मगर एजीबल के खौफ से जान बचाकर भाग निकला। यूं इबलीस ने उसकी जिस्मानी कमजोरी का फायदा उठाया। इबलीस अभी तक उसी तरह हम इंसानों को मगलूब करता है जब कभी भी कोई हालात के हाथों दुख पाता है, गुर्बत या परेशानी का शिकार होता है, उसी वक्त इबलीस उसे आजमाइश में फंसा लेता है। वो हमारी सीरत के कमजोर पहलों पर हमलावर होता है। वो हमारे ईमान को मुतजलजल करने की अजहद कोशिश करता है। वो यहां तक करता है कि हम खुदा का एतबार ही न करें। वो हमें उसकी मोहब्बत में शक करने की आजमाइश से दोचार करता है। लेकिन ख्वाह वो कुछ भी करे, अगर हम उसका मुकाबला इस तरह करें जैसे खुदावन मसीह ने किया, तो हम उससे मगलूब नहीं होंगे। जब खुदावन मसीह ने आजमाने वाले को फरमाया कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है, ये वही कलाम था जो उसने 1400 साल पहले बनी इसराइल से किया था। और तो उस सारे तरीक को याद रखना जिस पर उन 40 बरसों में खुदावन तेरे खुदा ने तुझको इस बयाबान में चलाया, ताकि वो तुझको आजिज करके आजमाए और तेरे दिल की बात दरियाफ्त करे कि उसके हुक्मों को मानेगा या नहीं। और उसने तुझको आजिज किया भी और तुझको भूखा होने दिया, और वो मन जिसे न तू न तेरे बाप दादा जानते थे तुझको खिलाया, ताकि तुझको सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहता, बल्कि हर बात से जो खुदावन के मुंह से निकलती है वो जीता रहेगा। बियाबान में जब खुरश के तमाम जराए मादूम थे, खुदा ने अपने लोगों के लिए आसमान से मह बरसाया, बल्कि उनकी हर जरूरत वाफर मकदार में पूरी की। इससे उन्हें सबक सीखना था कि जब उन्होंने खुदा पर भरोसा रखा और उसकी मर्जी पर चले तो खुदावन ने उन्हें तर्क न किया। वो सबक जो निजात दहिंदा ने बनी इसराइल को सिखाया था, उस पर उसने खुद अमल भी किया। आरे वक्त में कलाम ने इब्रानियों की मदद फरमाई, उसी कलाम से यसू की हाजत रफा हुई। उसने खुदावन का इंतजार
क्या ताकि वो उसे सुकून दे।
बयाबान में भी वो खुदा के ताबे था और वो इबलीस की तजवीज पर अमल करके खुराक हासिल करना ना चाहता था। आदमी सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। बाज मसीह यीशु के पैरोकारों को इस सतह पर लाया जाता है जहां वो खुदा की खिदमत नहीं कर सकते, बल्कि दुनियावी कारोबार की सर पर सती करे हैं। उसके दिल में इस तरह का खदशा पैदा किया जाता है कि उसने खुदा की फरमन बरदारी की तो शायद उसके जराए आमदनी कम हो जाएंगे। इबलीस उसे बावर कराने की तगुदो में लगा रहता है कि उसे अपने दुनियावी कारोबार के लिए खुदा में कायलियत की जरूरत नहीं। मगर याद रखिए, इस दुनिया में रहते हुए हम सिर्फ खुदा के कलाम पर ही भरोसा रख सकते हैं। तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। मत्ता 33:6। हत्ता के इस जिंदगी में खुदा से जुदा होना हमारे से किसी तरह भी मुफीद नहीं। जब हम खुदा के पाक कलाम की कुव्वत को जान जाते हैं तो हमें अपनी जिंदगियों को बचाने या खुराक हासिल करने के लिए इबलीस की तजावीज पर अमल पैरा होने की हरगिज जरूरत नहीं, बल्कि हमारा सिर्फ ये सवाल होना चाहिए कि खुदा का हुक्म क्या है और इसके लिए उसने क्या वादा कर रखा है। ये जानकर हम खुदा के ताबे फरमान रहेंगे और उसमें अपना मुकम्मल भरसा रखेंगे। आखिरी कश्मकश में जो खुदा से वफादार हैं वो देखेंगे कि तमाम जमीनी इमदाद का यकसर खात्मा हो जाएगा। चूंकि वो जमीनी हाकिमों के कहने पर खुदा की ताबेदारी से इन्हराफ नहीं करेंगे, इसलिए उन्हें खरीदने या बेचने से मना कर दिया जाएगा। मुकाशफा 11:13-17। मगर जो ताबे फरमान रहेंगे उन्हें ये वादा दिया गया है, वो बुलंदी पर रहेगा, उसकी पनागा पहाड़ का किला होगा, उसको रोटी दी जाएगी, उसका पानी मुकर्रर होगा। यसया 16:33। इसी वादा पर खुदावन के बच्चे कायम रहेंगे और जब जमीन वीरान हो जाएगी फिर भी उनको रोटी मिलेगी और वो जिंदा रहेंगे। वो आफत के वक्त शर्मिंदा न होंगे और कौल के दिनों में आसूदा रहेंगे। जबूर 19:37।
हबकूक नबी आने वाले औकात पर नजर करते हुए कलीसा के ईमान का इजहार करता है। और ताक में फल ना लगे और जैतून का हासिल जाया हो जाए और खेतों में कुछ पैदावार ना हो और भीड़खाने से भेड़ें जाती रहें और तवीलू में मवेशी ना हो, तो भी मैं खुदावन से खुश रहूंगा और अपने निजात बख्श खुदा से खुश वक्त होंगा। हबकूक 17:3-18। हमारे खुदावन पर जो पहली आजमाइश आई उससे हम सब इश्तिहा और अपने जज्बात पर जब्त करने का सबक सीखें। हर जमाना में ये जिस्मानी आजमाइश इंसान की बेहयाई और बदहाली का सबब रही है। बद परहेजी के जरिए इबलीस इंसानी रूहानी जहनी और अखलाकी कुवा को तबाह करना है जो खुदावन खुदा ने इंसान को वदियत कर रखी हैं, और ये नहायत ही बेशकीमत है। यही वजह है कि इंसान अबदी चीजों की कदरों में नजलत से बेबहरा रहता है। बुरी रगबत की गजा के सबब खुदा की शेबा इंसान में बहाल नहीं हो रही। बीमारी, उसरत, बदहाली और पेटोपन जो मसीह यसू की पहली आमद के वक्त दुनिया में मौजूद थी,
मसीह यस्सु की आमद सानी के वक्त भी मौजूद पाई जाएगी। बल्कि यस्सु मसीह ने बताया कि अखीर जमाना में लोगों की हालत बिल्कुल वही होगी जो नूह के तूफान से पहले थी और जो सदूम अमूरा की थी। इंसान का हर ख्याल बदी की तरफ माइल होगा और वो अखीर जमाना हमारा जमाना है। हमें यस्सु के फाका करने का सबक सीखना चाहिए। उसके नमूना से सीखते हुए हमें अपने जज्बात और बेमहार खाने पीने की आदत पर जब्त करना लाजिम है। नीज अपने जज्बात और इश्तेहा को खुदा की मर्जी के जेरे साया लाना है। हम अपनी जवाल पजीर फितरत पर काबू पाएं। इसी के जरिए इबलीस हम पर आजमाइश लाता है। खुदावन मसीह जानता था कि इबलीस हर शख्स के पास आएगा और उन कमजोरियों का फायदा उठाएगा जो हमने विरासत में पाई हैं, और वो तमाम लोग जिनका भरोसा खुदा में नहीं उन्हें अपने जाल में फंसा लेगा। लेकिन हमारा खुदा हमारे आगे आगे चलता है ताकि हमें फतह से हमकिन ना करे। उसका ये मंशा नहीं कि हम इबलीस के साथ जंग करके शिकस्त का मुंह देखें। वो हमें इबलीस के हमलों में पस्त हिम्मत और दिलगीर नहीं होने देगा, बल्कि उसका कहना है कि खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। यूहन्ना 33:16। वो तमाम लोग जो इश्तेहा की आजमाइश से दोचार हैं उन्हें आजमाइश के बयाबान में निजात दहिंदा की तरफ तकना चाहिए। उसकी अजियत को सलीब पर देखें जिसने कहा, मैं प्यासा हूं। उसने वो सब कुछ बर्दाश्त किया जो हमारे लिए भी बर्दाश्त करना मुमकिन है। उसकी फतह हमारी फतह है। खुदावन यस्सु मसीह ने अपने आसमानी बाप की हिकमत और ताकत पर भरोसा किया। उसने फरमाया, खुदावन खुदा मेरी हिमायत करेगा और इसलिए मैं शर्मिंदा न होऊंगा, और इसीलिए मैंने अपना मुंह संगेखार की मानिन बनाया, और मुझे यकीन है कि मैं शर्मसार न होऊंगा। मुझे रास्तबाज ठहराने वाला नजदीक है, कौन मुझसे झगड़ा करेगा? आओ हम आमने सामने खड़े हों। मेरा मुखालिफ कौन है? वो मेरे पास आए। देखो खुदावन खुदा मेरी हिमायत करेगा, कौन मुझे मुजरिम फहराएगा? देख वो सब कपड़े की मानिंद पुराने हो जाएंगे, उनको कीड़े खा जाएंगे। तुम्हारे दरमियान कौन है जो खुदावन से डरता और उसके खादिम की बातें सुनता है? जो अंधेरे में चलता और रोशनी नहीं पाता, वो खुदावन के नाम पर तवक्कुल करे और अपने खुदा पर भरोसा रखे। यसाया 7:50-10। मसीह खुदावन ने मजीद फरमाया, दुनिया का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं। यूहन्ना 30:14। यीशु में कोई भी ऐसी चीज ना थी जो इबलीस की बातों और मक्कारी पर कान धरती। उसने अपने जहन में भी आजमाइश को दाखिल होने ना दिया। उसने अपने गुमान में भी गुनाह को दाखिला ना दिया। खुदावन हमारे लिए भी ये कर सकता है। उसकी बशरियत अलूहियत के साथ मुत्तहिद थी। रूहुल कुदुस जो उसमें बसा हुआ था इबलीस के साथ जंग करने के लिए मौजू और काफी था। वो आया ताकि हमें भी उस इलाही फितरत का हिस्सा बना दे। जब तक हम ईमान के वसीला उससे जुड़े रहते हैं, उस वक्त तक गुनाह हम पर हुकूमत नहीं जता सकता। गुनाह पर हम क्यों कर काबू पा सकते हैं? यीशु मसीह ने हमें अपना नमूना देकर दिखा दिया है। इबलीस के साथ कशमकश के दौरान मसीह खुदावन किस तरह इबलीस पर गालिब आया? खुदा के कलाम के जरिए। इबलीस की हर आजमाइश की मुजाहमत करते हुए मसीह ने कहा, ये लिखा है। हमें भी कलाम के वसीला कीमती वादे दिए गए हैं। इसी कलाम की बदौलत हम इलाही फितरत का हिस्सा बन सकते हैं, जिनके बायस उसने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे किए, ताकि उनके वसीला से तुम उस खराबी से छूटकर जो दुनिया में बुरी ख्वाहिश के सबब से है, जाते इलाही में शरीक हो जाओ। 2 पत्रस 4:1। खुदा के पाक कलाम में जितने भी वादे हैं वो सब हमारे लिए हैं। हर बात जो खुदा के मुंह से निकलती है उससे हम जिंदा रहते हैं। जब हम पर आजमाइश हमलावर होती है, उस वक्त हालात या अपनी कमजोरी पर निगाह ना करें, बल्कि खुदावन खुदा के कलाम की कुदरत की तरफ देखें। कलाम मुकद्दस की तमाम ताकत, तमाम कुदरत सिर्फ आपके लिए है। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। इंसानी कामों में तेरे लबों के कलाम की मदद से मैं जालिमों की राहों से बाज रहा हूं। जबूर 4:119, जबूर 4:17।